أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر رسول پر اور ہم نے اطاعت کی. پھر ان میں سے ایک گروپ ہے وہ بالکل اس بات سے پھر جاتا ہے اور وہ مومن نہیں ہے. وما اولئک بالمؤمنین. جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں اللہ رسول فیصلہ کرے شریعت کے مطابق تو ان میں سے ایک جماعت بھاگ جاتی ہے. وہیں یکل لہم الحق کو اور جب ان کو جب یہ ان کو کیا کہتے ہیں ان کسی سے کچھ لینا ہو حق بات تو حق بات ان کو ملتی ہو وہیں یکن ان کو حق بات مل جاتی ہو یعنی فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہو تو یا تو الہی دوڑتے ہو یا نبی کے پاس آتے ہیں. ابھی قلوب مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ نبی کے بارے میں شک و شبہ میں ہے. ہم یخافون یا وہ خوف کرتے ہیں کہ اللہ رسول ان پر بے انصافی کریں گے عدل نہیں کریں گے. بل اولئک هم الظالمون یہ تو ظالم لوگ ہیں. اس کے مقابلے میں مومن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین. مومن وہ ہے جب اللہ رسول ان کو بلاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یقول سمعنا واطعنا. وہ کیا کہتے ہیں ہم نے سنا ہم حاضر ہیں ہم اطاعت کرنے والے ہیں. وہ اولئک هم المفلحون یہی لوگ کیا ہے کامیاب ہے. اللہ اکبر. یہاں سے منافقین کا ذکر شروع سے چل رہا ہے. منافقین کا ذکر اس سورہ نور کے شروع سے چل رہا ہے. یہ سورہ نور کی آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 47-48 پڑھی 49 پڑھی 47 سے شروع کیا. شروع میں تو منافقین مدینہ منورہ میں رہنے والے یوں چاہتے تھے کہ نبی کو کسی نہ کسی تکلیف پہنچائے. They want to hurt رسول اللہ. جب نبی کو نہیں پہنچا سکتے تھے تو نبی کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی بیوی پر تہمت لگائی زنا کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر جیسا کہ پورا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے قرآن کریم کا پورا ایک رکوع اتار دیا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. پورا رکوع اتار دیا. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد وہ احکام بیان کیے تاکہ تم اپنے لوگوں کے اندر میں اچھے اخلاق پیش کر سکو معاشرہ تمہارا اچھا بن جائے زنا نہ ہو اگر کسی پر تہمت لگائے گواہ لاؤ فلاں 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 آنکھیں نیچی رکھو مرد اور عورتیں ساری باتیں بیان کی. اب آج کے سبق میں ایک اور بات جو بیان کرتے ہیں منافقین تین باتیں کہتے ہیں ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور بات بھی مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ تو پہلے سپارے میں بھی اللہ نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر لیکن اللہ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. یہاں پر بھی وہی فیصلہ ہے وہاں پر بھی وہی فیصلہ کہ یہ مومن نہیں ہے. ظاہر میں کہتے ہیں اللہ رسول پر ایمان ہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں انکار کرتے ہیں. آج کے سبق میں بھی یہی بات ہے. اصل میں پہلے تم یہ آیت کیوں اتری What was the reason behind this آیت شان نزول کیا ہے اس کا اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری. اب یہ آیت صرف شان نزول صرف انہی کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے ہے. پہلے شان نزول سمجھو. بشیر نامی ایک منافق تھا مدینہ منورہ اس کا نام بشیر تھا.
और उसके मुकाबले में एक यहूदी था, दोनों एक स्ट्रीट में रहते थे,
एक स्ट्रीट में
दोस्त थे।
यायर क्यों उतरे से बता रहा, समझिए आप क्या वजह है।
दोनों दोस्त थे, एक प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ा हो गया। बशीर कहता है मेरी है और यहूदी कहता है मेरी है,
दिस प्रॉपर्टी इज माइन।
अरे उस जमाने में तो रजिस्टर ही नहीं करते थे नाम पर, एक दूसरे पर भरोसा करते थे, बल्कि हमारे बूढ़े लोगों तक यही चलता रहा, कोई नहीं, कोई रजिस्टर वजिस्टर नहीं है, बस जबान है, कह दिया हो गया। अब यहूदी कह रहा है चलो तुम कहते हैं तुम्हारी है, मैं कहता हूं मेरी है, तो हम फैसला करवाते हैं किसके पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं, फैसला कराएंगे। वो ये बड़ा चालाक था बशीर, मुनाफिक जो था बड़ा चालाक था। उसने कहा तू तो मोमिन नहीं है, तेरे अंदर में ईमान नहीं, तू तो यहूदी है, तो तू हमारे नबी के पास नहीं जा सकता, हम जाएंगे तेरे ही मौलवी के पास। उसका नाम था काब बिन अशरफ, यहूदी था, यहूदी मौलवी था, पोप था, पादरी था, बहुत बड़ा तौरात का आलिम था, उसके पास चले जाते हैं, वो फैसला करेगा। मोहल्ले वालों ने कहा नहीं यार झगड़े मत करो, जाओ नबी के पास। सबने उनको फोर्स किया तो दोनों मान गए, कहां चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके तो दिल में खटखट था, झूठा था ना ये बशीर के, जो मुनाफिक था उसको तो पता था मैं झूठा हूं, नबी के पास जाएंगे तो फैसला मेरे मुताबिक नहीं होने वाला है, वो तो उसी के मुताबिक होगा, मुताबिक होगा। दोनों चले तो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई क्यों आए हो, का फैसला करने के लिए, ये जमीन, वो मुनाफिक कहता मेरी है, ये कहता मेरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह वगैरह बुला करके फैसला कर दिया, ये जमीन मुनाफिक, ये बशीर तेरी नहीं है, यहूदी की है, फैसला हो गया। अब ये जानता था कि ये तो मेरी तो जमीन भी गई और इज्जत भी गई, मोहल्ले में मैं क्या जवाब दूंगा, सबको पता है, अपनी इज्जत को बचाने के लिए परेशान था, तो मेरी तो जमीन भी चली गई। तो इन दोनों ने, बशीर ने कहा मुनाफिक ने यहूदी को, यार चलते हैं हजरत उमर के पास फैसला करने के लिए, फैसला हो चुका है, डिसीशन इज डन। लेकिन उसको चैन नहीं आया, वो ये समझता था कि हजरत उमर बड़े जलाली है, वो तो कभी भी नॉन मुस्लिम का सुनने वाले नहीं है, मेरा ही सुनेंगे, चूंकि मैं तो जाहिर में तो मुसलमान हूं। अल्लाह के नबी का फैसला उसको पसंद नहीं आया और कहां गया, हजरत उमर के पास गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाजा नोक किया, भाई कैसे आना हुआ, का ये कहता मेरी जमीन है, मैं कहता हूं मेरी जमीन है, आपके पास फैसला करने के लिए आए, तो मैं तू मुसलमान है ये यहूदी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास साहबा को थोड़ी इजाजत दी थी फैसला करने की, उसमें हजरत उमर, मुआज़ इब्ने जबल, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वगैरह साहबा थे, छोटे छोटे बात में वो फैसला कर देते थे। तो कहा यार अगर दो तुम मुसलमान होते ना फैसला करना मेरे लिए आसान था, लेकिन ये दूसरे मजहब का है यहूदी और ये मुसलमान है, ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, आप ऐसा करो नबी के पास चले जाओ। कहां चले जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो फैसला कर देंगे। वो कहा यहूदी ने, हम वहां जाकर आए हैं, हम तो जाकर आए हैं, उन्होंने क्या फैसला किया, कहा उन्होंने कहा जमीन मेरी है, इसकी नहीं, बशीर मुनाफिक की नहीं है, मेरी है, और ये कहता है नहीं यार फैसला बराबर नहीं हो, चलो हजरत उमर के पास। कहा बैठो बैठो, इधर बैठो इधर बैठो, मैं आ रहा हूं। अंदर में गए हजरत उमर, तलवार लेकर आए और फौरन उस मुनाफिक की गर्दन को उड़ा दिया, फैसला हो गया। कहा जो अल्लाह रसूल के फैसलों का ना माने उसका फैसला यह तलवार है, जो अल्लाह रसूल की बात ही ना माने तो उसके लिए उमर के पास तलवार है और कुछ नहीं है, उसी वक्त उसको मार दिया। आई बस अल्लाह ने उस वक्त आयत उतारी, वयकुलूना आमन्ना बिल्लाही वबिर रसूली
वाताना,
जाहिर में तो कहते हैं,
लेकिन तीन किस्म के लोग हैं, एक तो नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम और एक मुनाफिक, तीन किस्म के।
नॉन मुस्लिम तो बिल्कुल जाहिर है, दे आर नॉन मुस्लिम, दे से देमसेल्फ दे नॉट बिलीवर्स।
मुसलमान भी जाहिर है, ये तो खुले मुसलमान है, पता चल जाता है। लेकिन नंबर तीन पर जो मुनाफिक है वो पता नहीं चलता, जाहिर में तो नमाज भी पढ़ते थे, जाहिर में मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ते थे, हां रात की नमाजों में छुप जाते थे ताकि कोई ना देखे अंधेरे में, दिन की नमाज में आते थे, डरते थे कहीं हमें काफिर समझकर मार ना दिया जाए। तो वो ऊपर से तो बिल्कुल ऐसे थे, आते भी थे, पहले सिपाही में कहा अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी के पास आते थे और कहते हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा, आखिरत पर ईमान, फिर वापस अपनी कौम के पास जाते हैं तो कहते थे इन बेवकूफ जैसे हम ईमान लाए हैं। अल्लाह कहते हैं अला इन्नहुम सुफहा वलाकिन ला यअलमून, बेवकूफ तुम है, मेरे साहबा नहीं है, मेरे नबी नहीं है, बेवकूफ तुम है। तो ये तीसरी किस्म लोगों के साथ फैसला मुसलमान जैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि वो जाहिर में रोजे भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, उनके दिल की बात तो अल्लाह ही को पता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बज़ाहिर कभी कभी उनके हालात को जाहिर कर देता है, उनकी बातों को क्या करता है, जाहिर कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पिरिचुअली दिली एतबार से बयान नहीं कर सकते थे कि ये मुनाफिक है या नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताया था कौन कौन मुनाफिक है, और उसकी पूरी लिस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बतला दी थी कि फुला 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 मदीने में मुनाफिक है। तो उनके मर जाते थे वो लोग, तो वो सहाबी उनके अंदर में जाते, उनकी जनाजे में नहीं जाते थे। तो हजरत उमर को पता था कि इनके पास पूरी लिस्ट है मुनाफिकीन की, तो जाकर पूछते थे मेरा नाम तो नहीं है उसमें, कह रहे तुम्हारा नहीं है, बोलो कौन कौन है, कहा मैं नहीं बता सकता, ये मेरे राज है अल्लाह के नबी के। तो जिस जनाजे में वो सहाबी नहीं जाते थे, उमर भी नहीं जाते थे, समझ जाते थे मुनाफिक। लेकिन जाहिरी एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद निशानी बतला दी है मुनाफिक की निशानी, मिश्कात शरीफ में भी है और तिर्मिजी शरीफ में भी है। आयतुल मुनाफिक सलास एक रिवायत में, और आयतुल मुनाफिक अरबा एक रिवायत में चार है। मुनाफिक की तीन निशानी है, इजा हदसा कजबा, बात करे तो झूठ बोले, ये झूठ बोलने वाला मुनाफिक है, ये मुनाफिक की साइन है, ये एतिकादी मुनाफिक नहीं है, प्रैक्टिकली मुनाफिक है। एक तो एतिकादी का क्या माना, मुंह से तो कलमा पढ़ता है, अंदर से नफरत करता है, कलमा नहीं पढ़ता, और ईमान नाम है दिल से कलमा पढ़ने का, इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब, बुखारी कहते हैं इमाम बुखारी किताब अल ईमान में, जबान से इकरार करो और दिल में तस्दीक करो, टेस्टिफाई करो कि यस आई एम ट्रू मुस्लिम, वो ट्रू मुस्लिम है, इनके तो जबान पर लेकिन अंदर में नहीं। अभी आप मदीना मुनव्वरा चले जाओ, मस्जिद दरार है, अभी ये बना रहे हैं, दोबारा हम देखने गए थे मस्जिद दीनार लोगों के लिए कि भाई ये मस्जिद दीनार थी, काम चल रहा था, दीवारें चारों तरफ बन चुकी थी, हम जब गए तो अक्टूबर में शायद बनी चुकी होगी, ये मस्जिद बनाई थी मुनाफिकीन ने, बिल्कुल मस्जिद कुबा से बाहर निकलो तो सामने है मस्जिद कुबा, वहां पर ये नहीं, वहां पर बिल्कुल सामने मस्जिद दरार है, ये बनाई थी अब्दुल्ला इब्ने मुनाफिक, जो रईस उल मुनाफिक उबई जो था उसने बनाई थी। क्यों बनाई थी, वैसे जाहिर में कहते थे या रसूल्ला ने मस्जिद बनाई है, आप तशरीफ लाइए, उसकी इफ्तिताह कर दीजिए, बिगिनिंग कर दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, ये हमने डिसेबल पीपल लोगों के लिए बनाई, किसके लिए, डिसेबल के लिए, यानी जो कमजोर होते हैं, दूर तक नहीं जा सकते, आपकी मस्जिद तक नहीं आ सकते, कुबा तक नहीं जा सकते, हमें वहां पर बना दिए कि ये लोग डिसेबल लोग हैं, यहां नमाज पढ़ेंगे, जो कमजोर है यही आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है मैं तबूक में जा रहा हूं,
आने के बाद दुआ कर दूंगा, आने के बाद जब वापसी होगी आई एम गोना कम टू योर मस्जिद आई विल बिगिन मेक दुआ फॉर
नमाज में।
अब तबूक से वापस आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ से वही उतर गई, फरमाया नबी वहां नमाज के लिए नहीं जाना, अल्लाह ने बतला दिया वहां नहीं जाना है, यह मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई गई है, यह आपके खिलाफ प्लानिंग करने किया है कि आपको कत्ल करने की साजिश वहां से की जाएगी, ये अल्लाह ने बतलाया नबी शासन। तो अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा अल्लाह का हुक्म है जाकर इस मस्जिद को जला दो। मस्जिद को क्या मालूम होता है, जो मस्जिद फितना का घर हो मस्जिद नहीं, जहां से फितने फैल रहे हो वो मस्जिद नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा यहां से फितने फैलेंगे इसको जला दो। मस्जिद वो है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिद वो है जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है, जिसमें नमाज होती है, जिसमें नसीहत होती है, जिसमें दर्स कुरान होता है, लोगों को दावत दी जाती है, तबलीग होती है, वो मस्जिद है। अब इन लोगों ने दोबारा बनाना शुरू किया है ताकि लोग आकर जियारत करें, इसकी जियारत करके क्या करेंगे, वहां पर तो अल्लाह की लानत उतरी है। तो ये अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया इदा हद ऐसा कदेबा, जो बात करे झूठ बोले, व्हेन ही स्पीक लाइज, ये साइन ऑफ द मुनाफिक है याद रखना। वईदा वादा अखलफा, और जब वादा करता है लोगों के साथ भाई ये करूं वो करूं, इसीलिए कहा जब वादा करो तो क्या करो इंशाल्लाह, साथ में इंशाल्लाह, नहीं जा सके तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने कहा जरूर मैं आऊंगा मैं करूंगा, तो फिर याद रखो ये निशानी है मुनाफिक की, अमली निशानी। वईदा खासमा फाजरा, और जब भी झगड़ा होता है तो बड़ी बड़ी टोल टोल के गालियां देता है, गालियां देता है ना, वो अभी तो कैसी कैसी गालियां देते हैं, मां की बाप की बहन की कैसी कैसी गालियां, ये मुनाफिक की निशानी। वईदा खासमा फाजरा, और एक और निशानी जानबूझकर नमाज को डिले करता है, एंड टाइम पर पढ़ता है, ये मुनाफिक की निशानी है। किसकी निशानी? मुनाफिक की निशानी। याद रखो ये सब बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, गोया ये यूं कहना चाहते थे कि इस्लाम में हमारे मसाइल का हल नहीं है, ये मुनाफिक यही तो कहना चाहता है, नबी के पास हमारे मसले का कोई हल नहीं है। इसलिए याद रखो ये शान नजूल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, ये कुरान कयामत तक के लिए है, जब तुम्हारे सामने अल्लाह रसूल का फैसला आ जाए कि मसला ये है मसला ये है, फिर तुम कहे हम मसले को फॉलो नहीं करेंगे, हम अब इंग्लिश लॉ को फॉलो करेंगे, समझो उसने कुरान और हदीस की मुखालिफत की है। उस जमाने में भी यही होता था, इस जमाने में भी तलाक में यही हो, बहुत सारे मसाइल है जिसमें वो नहीं मानते, वी नॉट गोइंग टू फॉलो द इस्लामिक लॉ। शरिया काउंसिल अगर कोई तुम्हें लॉ बयान करे कुरान और हदीस से तो यू हैव टू बिलीव इट। हसन बसरी फरमाते जिनको अल्लाह रसूल की तरफ हाकिम या काजी बुलाए फैसले के लिए और वो न जाए या न माने वो जालिम है, जालिम। बहुत सारे ऐसे मसाइल है जिसमें आज लोग नहीं मानते, हमारे कितने यंगस्टर्स हैं, जाहिरी एतबार से वो नाम के मुसलमान है लेकिन मेंटली मुर्तद है, मेंटली वो इस्लाम से बाहर है। बहुत सारे इस पर मैंने तो वैसे बहुत सारे नौजवानों से मुलाकात की, वो बहुत सारे नबी के मौजजात को नहीं मानते, कुरान की बातों को नहीं मानते। अभी हमारा वहां उलमा की मजलिस हुई थी रमजान से पहले, 400 उलमा जमा किए थे पूरे ब्रेकफोर्ट के, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया कि यंगस्टर्स आज जो है इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं। बाकायदा चैनल है एक्स मुस्लिम का चैनल बनाया गया और उस पर वो कहते वो कहां मुसलमान होंगे लेकिन अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं और उस पर यंगस्टर्स को अपनी तरफ दावत देते हैं, इस्लाम छोड़कर हमारी तरफ आ जाओ। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था कि मौजिजा मेराज का कुरान से साबित है, मौजिजा मरकल ऑफ मेराज इज साबित फ्रॉम द कुरान करीम, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, और बुखारी शरीफ से मस्जिद अक्सा से 7 आसमान का जिक्र है, फिर वापस आने का लैलन रात के थोड़े हिस्से में। यंगस्टर्स कहते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है कि आदमी यहां से वहां, वहां से 7 आसमान, जन्नत जहन्नम अल्लाह को मिलकर रात के एक हिस्से में वापस आ जाए? यही तो बात थी, मक्का के मुशरिकीन इसको मानते नहीं थे, इनकार करते थे। आज का हमारा नौजवान इनकार करता है, ऐसे बेशुमार मौजिजात है, बेशुमार कुरान की आयत है, वो इनकार करते हैं। इसी को यहां कहा जा रहा है वइदा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही, ये कहते तो है वमा उलाइका बिल मुमिनीन, हम अल्लाह को मानते रसूल को मानते इताअत करते, वमा उलाइका बिल मुमिन, लेकिन वो मोमिन नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। क्यों? जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह रसूल की तरफ ताकि रसूल शासन उनके दरमियान में फैसला करे, तो उसमें से एक जमात ऐसी है जो नबी का नाम सुनकर भाग जाती है, क्योंकि नबी तो फैसला करेंगे अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, गवाहों के जरिए फैसला करेंगे, भाग जाते हैं। अब हां अल्लाह क्या कह रहे हैं, अगर उनके मुताबिक कोई फैसला हो जाए तो आते हैं दौड़ते, ऐसा लगे कि फैसला मेरी मुताबिक होगा तो दौड़ कर आते हैं अल्लाह कह रहे हैं, और अगर उनके खिलाफ होता है तो भागते हैं। जैसे ये आदमी काब बिन अशरफ के पास जाएंगे, तूरा तेरा ईमान नहीं है ना, कैसे उसको सबक पढ़ा रहा है, मैं तो मोमिन हूं लेकिन तू मोमिन नहीं, तो तुम्हारे मौलवी के पास चलते हैं, तू मोमिन है तो उसको तेरे मौलवी के पास ले जा, इमामुल अंबिया के पास ले जा, वो भी बात समझ में नहीं आया तो हजरत उमर के पास गया, तो आखिर तो यही हुआ ना कि तू तो जहन्नम रसीद हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह कह रहे अफी क्यों नहीं मानते, अल्लाह 3 बीमारी बयान कर रहे हैं, अफी कुलूबिहिम मरद, अफी कुलूबिहिम मरद, या तो तुम्हारे दिल के अंदर में क्या है, खोट है। मालूम होता है दिल असल है ईमान के लिए, जबान नहीं। जिसके दिल में बीमारी हो, जैसे आज पढ़ेगा हाफिज सूरे तौबा एंड होती है, उसमें आखिरी रुकू में कहा है कि जो आंखें उठाकर देखते रहते हैं औरतों को उनके दिल में बीमारी है, वहां पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, okay? दिल के बीमार है, ये गुनाह कर रहे दिल से, जबान से, आंखों से, जबान से नहीं। अल्लाह क्या करे, इसका दिल बीमार है। मालूम होता है ईमान के लिए असल दिल है, अगर दिल सही है तो सब सही है। अला इन फिल जसद जसदी लमुज़्गा इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लू व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लू, अगर तुम्हारा दिल सही है तो पूरा बदन सही है, और अगर तुम्हारा दिल गंदा है तो पूरे आमाल तुम्हारे क्या है, गंदा। अला वही अलकल, अल्लाह के नबी क्या कह रहे, वो क्या है, तुम्हारा दिल है। हाँ, इसी को क्या 3 बीमारियां बयान की, इसीलिए हसद उसका ताल्लुक दिल से है, जलस अल्लाह बचाए, जलसी से अल्लाह बचाए। हाँ, दुआ करो मगरिब की, जलसी से अल्लाह बचाए, किसी पर जलसी नहीं करना। क्यों? हदीस में अल हसदु याकुलुल हसना कमा ताकुलु नारु अलहतबा औ कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसी इंसान की सारी नमाज रोजा हाज जकात जिक्रुल्लाह कुरान तिलावत ऐसे जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है, खत्म। एक जलसी की बात, हसाइद नहीं का अल हसन, वन जलसी, किसी से जलसी ना करो, किसी से दिया अल्लाह ने उसको दिया, मेरा उससे क्या लेना देना है। कभी किसी के साथ जलसी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। تو حسد کا تعلق بھی بغض, کسی سے بغض رکھتے ہیں, ہم بغض کو کریٹ کرتے ہیں. اس سے اور موقع ملے تو. اسی لیے کہا جو بغض رکھتا ہے, دل میں کینہ رکھتا ہے, تو بری رات میں لیلۃ القدر میں بھی, لیلۃ البرات میں بھی, عید کی راتوں میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں ہے مشرک اور مشاہن. مشاہن کے معنی ہے جو پکانے والا کینے کو اندر, آج تھوڑا کل تھوڑا کل تھوڑا, اتنا غصہ تھا دیکھ کر ابھی تو مجھے موقع مل جائے تو قتل کرو, اتنا کینہ ہے اس کے ساتھ, اتنا حسد ہے, اتنا اس کے ساتھ بغض ہے, بے شمار بیماری اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ انسان دل سے اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت بڑا گناہ ہے یہ, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک غزوے میں مہاجرین, اس غزوے کا نام ہے غزوے بن المستلق. یہ واقعہ سنیے, بہت عجیب ہے. مہاجر اور انصار دو کی لڑائی ہو گئی, تو مہاجر کہتا ہے یا للمہاجرون تعالوا, اے سارے مہاجر میرے ہیلپ کرو یار انصار کے مقابلے میں, وی گونا فائٹ وذ ہم. یا للانصار تعالوا, انصار کہہ رہا آ جاؤ سارے انصاری میرا ہیلپ کرو. اب جب سب جمع ہوتے تو ادھر سے مہاجرین ادھر سے انصار, بہت بڑی جنگ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, چونکہ غزوے سے واپس آ رہے تھے, راستے میں کچھ چکمک ہو گئی, مایا یہ تو بہت گندی چیز ہے, تم ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے, منع کر دیا. اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا. اب رات کا وقت تھا, اس غزوے میں منافقین کا لیڈر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق وہ بھی تھا, وہ دو چار منافقین کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کے خلاف بکواس کر رہا تھا تاکہ کوئی نہ سنے, چپ چاپ. لیخرجن الاعز منہ الاذل, نبی تو ذلیل ہے نعوذ باللہ, یہ تو وہاں سے آئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم ان کو عزت والے ہم ہیں, وی ہیو دا ریسپیکٹ, وی آر دا لیڈر آف دا مدینہ ناٹ ہم, ہم ان کو نکالیں گے, اس قسم کی باتیں کرتا تھا. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی, زید بن ارقم تھوڑی دیر فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز لسننگ واٹ دے ٹاکنگ. ان دا مارننگ اللہ کے نبی کے پاس گئے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ یہ نا منافق آپ کے خلاف ایسی 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 باتیں بکواس کر رہے تھے. اللہ کے نبی, اے عبداللہ ادھر آؤ, فلاں ادھر آؤ, تم لوگ میرے خلاف بول رہے تھے, اللہ کی قسم اب آ رہا ہے وہ اقسم باللہ, نہیں ہم کیسے, ہم نے اگر آپ ہمیں کہیں آج بیٹل میں کوڑ جاؤ ہم کوڑ جائیں گے, وی ول لسن ٹو یو آلویز. دیکھو کیسی آگے آتا ہے وقسم باللہ, اگلی آیت میں قسم کھاتے تھے اللہ کی, ہم نے ایسا نہیں کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو کہا فکذبنی, جا تم جھوٹے ہو یہ سچے. اب بیچارے پریشان, روتے ہوئے نگل گئے, روتے ہوئے چلے گئے اپنے چچا کے پاس, چچا کو کہا ہے میں سچ بات کہی اور مجھے جھوٹا بنا, ان لوگوں نے قسمیں کھائی اور مجھے فرمایا تو کیوں گیا, تجھے کس نے کہا تھا جا کر بول لے گا, چپ رہتا. اللہ ان کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے. بس یہ رو رہے تھے, اتنے میں قرآن کی آیت اتر گئی, اذا جا کل منافقون, اے میرے نبی آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, اور ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ رسول ہیں, لیکن اللہ کیا کہے؟
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون.
صاف صاف کہہ دیا اللہ کے نبی، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، یہاں سے بول رہے ہیں، یہاں سے نہیں.
اللہ کے نبی نے زید بن ارقم کو بلایا،
عجیب، یا زید تعال،
بلایا،
کہا تو سچا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کے دل میں بیماری تھی اور اس بیماری کی وجہ سے ایسا کر رہے. وہ کیا بیماری ہے؟ کہ اندر میں ان کے پاس کلمہ نہیں ہے. امیر تابو یا تو شک میں ہے کہ اللہ کے نبی ریئل میں نبی بھی ہے یا نہیں، اللہ کے نبی ہے یا نہیں، شک میں ہے. اللہ کی وحدانیت میں شک ہے، اللہ کے ایک ہونے میں شک ہے، اللہ کے نبی کے فیصلے پر شک ہے. ام یخافونا ان یحیف اللہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ رسول ان پر ظلم کریں گے، انصاف نہیں کریں گے. یہ لفظ ہے یحیف کا معنی کیا ہے؟ بے انصافی. حضرت یہی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوئی ہوئی تو اللہ کے نبی ان کے پاس سوئے ہوئے تھے. شی ووک اپ، اللہ نبی واز ناٹ دیئر، ہی از گون. شی واز لوکنگ ان دی ہاؤس، دیکھ رہی تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے. دوسری مرتبہ سوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے بستر پر، شی ووک اپ، ہی از ناٹ ہیئر. کہاں گئے تھے؟ اٹھ کر تلاش کرنے لگی تو دیکھا تو اللہ کے نبی تو قبرستان میں ہے. اللہ نے حکم دیا جاؤ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جاؤ. اللہ کے نبی اس رات میں گئے اور جا کر کے مغفرت کی دعا کی تو واپس آئے تو سانس چل رہا تھا حضرت عائشہ کا، کیونکہ وہ دیکھنے گئی تھی کہیں اور سوکن کے گھر تو نہیں چلے گئے، چونکہ نو بیویاں تھی نا، تو کہیں اور بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے، باری تو میری ہے یہاں سونے کی، کہیں اور جگہ. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال فرمایا جو اللہ نے، ائی یحیف اللہ ورسول، کہ اللہ رسول تمہارے سے بے انصافی کرے گا، اللہ بھی اور رسول بھی. معلوم ہوتا اللہ کا رسول کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر کرتا نہیں ہے. تو ان لوگوں کے دلوں میں یہی بات ہے، یا تو دل کے بیمار ہے، یا تو پھر ان کو شک ہے اللہ کے نبی کی نبوت پر، یا تو پھر یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسلام میں ہمارا کوئی حل نہیں ہے. کتنے ہیں بیچارے یہی سمجھتے ہیں اسلام کان گیو اس نتھنگ، دیٹ گو کہاں پر. مغل بادشاہوں کا جب انتقال ہو گیا انڈیا میں تو انگریز کی حکومت چلی ان لوگوں پر، بعد میں نواب لوگ آئے نا. مغل بادشاہوں کی حکومت ختم ہوئی تو نوابوں کی حکومت آئی، یہاں ایک نواب، وہاں نواب، دلی کا نواب، فلاں کا نواب، گجرات کا نواب، سب جگہ نوابوں کی حکومت آئی. اب نوابوں کے لیے انگریز لوگ مسلط ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا مفتی بھی رکھا جائے گا اور ہمارا جج بھی رکھا جائے گا کورٹ میں دونوں. لیکن اگر مسلمانوں سے کہا تھا تم تمہارے مفتی کے فیصلے سے راضی نہ ہو تو ہمارے جج کے پاس آ جانا. اور بہت سارے ایسے کام میں اسلام تو سخت ہے، خاص کر میراث کے مسئلے میں، یا بچی کو بھی میراث دینا پڑے گا، جج تو فیصلہ، مفتی تو فیصلہ کرے گا، داماد کو بھی دینا پڑے گا، فلاں کو بھی دینا پڑے گا. تو وہ کہاں جاتے تھے؟ انگلش لوگ کے پاس. اور وہ شریعت کے خلاف ہوتا تھا، یقیناً یقیناً شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آہستہ 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 لوگ اسلام سے دور ہو گئے اور پھر دوسرے لوگ کی طرف چلے گئے. یہ کہ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کر، یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول نا انصافی کرتے، یو ڈونٹ ڈو جسٹس وتھ فور اس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ کون کرنے والے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے عجیب، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فارم تھا اور ایک اور تھے. اب اس میں علماء کا الگ الگ اختلاف تھے کہ وہ انصاری تھے یا حاتم ابن بلتا تھے، بدری صاحب تھے، بعضوں نے کہا کہ منافق تھے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا پانی کے بارے میں. وہ پانی جو چشمے کا ہوتا ہے نا بارش کا، تو پہلے اپنے کھیت میں حضرت زبیر لیتے تھے، زبیر اپنے کھیت میں لیتے تھے، بعد میں باجو والا جو پڑوس والا جو کھیت تھا اس کے اندر میں جو انصاری تھے اس کے کھیت میں جاتا تھا. اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا زبیر پہلے تم پانی بھر لو پھر وہ پانی تمہارا किधर जाएगा? उस दूसरे के खेत में जाएगा। यही होता है आमतौर पर। हिंदुस्तान में सब जगह पानी आता है, नहर का, रिवर का, तो पहले अपने खेत में, फिर वहां से आगे जाता है। पानी कूट के तो जाता नहीं। तो उसने क्या कहा? नहीं, तुम पानी ज्यादा ना बढ़ो, पानी छोड़ दो, तुम्हारे अंदर भी जाए, मेरे अंदर भी शुरू हो जाए सेम टाइम। तो अकान अल्लाह के नबी ने यूं कहा, पहले तुम पानी भर लो, फिर तुम्हारे लिए। तो अल्लाह के नबी के पास जाकर उस अंसारी ने यूं कहा, या वो मुनाफिक जो भी हो, उसने यूं कहा, आप फेवर करते हैं अपने रिश्तेदार की, क्योंकि फूफी के बेटे थे, आप फेवर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। फरमा, अल्लाह रसूल किसी का फेवर करेगा या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा? जाओ जुबैर, कमर कमर तक पानी भरो, जब तक पूरा ना हो जाए इसको नहीं लेना। अल्लाह के नबी को चला ना क्या, चूंकि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहा। अब ये अगर मुनाफिक है तो कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर ये बद्री साहबी है, हाकिम इब्ने बलदा है, तो फिर डेफिनेटली हाउ कैन द पर्सन हु डोंट लिसन टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अगेंस्ट द इंसाफ एंड जस्टिस ऑफ रसूलुल्लाह, तो काफिर हो जाएगा। तो उलमा कहते हैं ये वो आयत जो कुरान की उतरी है, जो मेरा फला वरबिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर, जब अल्लाह तेरे रब की कसम, जब अल्लाह रसूल कोई फैसला करे उस फैसले को मान लो, वरना तुम कामिल मोमिन नहीं है। इस आयत के नाजिल होने के पहले का वाकिया है, इसलिए कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन जो अल्लाह रसूल की बात को नहीं मानता है, यकीनन अल्लाह की तरफ से या रसूल अल्लाह उसके लिए फैसला कर देंगे कि इस्लाम से खारिज है, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। या यही कह बल उलाई का जालिमून, ये तो जालिम लोग है, ये तो जालिम लोग है। उसके मुकाबले में आयत खत्म करते हैं, क्या कह रहे हैं? इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इजा दुउ इलल्लाह व रसूलिही। अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं? मोमिनीन की बात, जब अल्लाह रसूल उनको फैसले के लिए बुलाते, आओ भाई मेरी कोर्ट में आओ, कुरान के मुताबिक फैसला होगा, तो कहते समीना व अताना। यहूद की तरह नहीं कहते समीना व असीना, हमने सुना हम नाफरमानी करेंगे। बनी इसराइल ने तो यही तो कहा था हजरत मूसा अलैहि सलाम, जाओ जाओ तुम जाओ, हम नहीं आते, तुम फैसला करो, हम नहीं आते। ये लोग जबान से कहते थे का मुनाफिक, लेकिन मोमिन होते थे साहबा। समेना व अताना, देखो ना ओहद का दिन है, हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला ने ओहद का दिन है फरमाया, चलो हुक्म हो गया रात में बैतुल में जाना, ओहद में जाना। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई, नई शादी हुई है, अब अपनी बीवी के साथ सोहबत की है, गुसल बाकी है, गुसल बाकी है। ये दिन बात ही है, एक बात हमेशा याद रखो, चलो मसला याद आ गया। तीन आदमी है, उनके घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तीन आदमी है, उनके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। कौन कौन लोग हैं जिनके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, उसकी तरफ देखिए। सबसे पहला वो आदमी है जिनके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, वो है कुत्ता रखने वाला। अब कुत्ते की तीन किस्में हैं, याद रखो ये मसला हमेशा। एक कुत्ता आदमी रखता है शिकार के लिए, पहले जमाने में कुत्ता रखते थे शिकार के लिए, जैसे आजकल वो एयरपोर्ट पर रखते हैं, उसको सुधाया हुआ होता है, सिखाया हुआ होता है, या तो शिकार करते हैं या फिर मुजरिम को पकड़ने के लिए होता है, ये ठीक है। दूसरा कुत्ता रखते हैं अपने चरावा, जो जितने बकरियां हैं उसकी हिफाजत के लिए कुत्ता रखते हैं, ताकि कोई वुल्फ वगैरह आकर खा न जाए। और तीसरा कुत्ता जो है वो आदमी क्यों रखता है, सुधाया हुआ हो, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है, हिफाजत के लिए, ठीक। लेकिन उसके अलावा जो कोई आदमी कुत्ता रखे अपने घर में शौकिया कुत्ता, शौक के, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। रहमत के फरिश्ते इसको क्यों कहते हैं? ये फरिश्ते हर घर में जाते हैं और उस घर में जाकर दुआ करते हैं, अल्लाह इस घर में रहमत उतार दे, लेकिन वो फरिश्ते नहीं आते जिसके घर में एक ये। नंबर दो पर जिनके घरों में दीवार के ऊपर फोटोज हो, तस्वीर हो जानदार की, इंसान या जानवर की, दीवार के ऊपर, ले जेब में अगर 50 किलो या 20 की तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अंदर में है, इज ओके, जरूरत है ना। इसी तरह वो फोटो है जो पासपोर्ट जरूरत है, लेकिन किसी ने अपना फोटो खिंचवाया और माशाल्लाह मेरे दादा का या मेरे पीर साहब का या मेरे शेख साहब का या फुला मजार का फुला, ये सब फोटो, यहां तक के हरम शरीफ के फोटो जो बहुत सारे फेस नजर आते हैं, सिर्फ काबा हो अलग बात है, सिर्फ गुम्बद हो अलग बात, क्योंकि वो जानदार नहीं, या किसी लायन का फोटो या जैसे भी कोई भी जानदार का फोटो अगर दीवार पर रखा हुआ है उसको निकाल करके रख देना चाहिए, वरना उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। समझ आई बात? एक आदमी मुझे कहने लगा, अच्छा है ना कुट्टा रखूंगा, क्यों? मलिकुल मौत आवे ही नहीं मेरे घर में। मलिकुल मौत डोंट कम टू माय हाउस एट ऑल। अरे भाई मलिकुल मौत इंसान के लिए है तो कुट्टे के तो भी फरिश्ते हैं रूह निकालने वाले, वो तो आ जाएंगे ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं, समझ में आई बात? वो एक मुझे सवाल किया, आई लव सिगरेट्स, विल आई गेट सिगरेट इन जन्नत? कहा सिगरेट तो मिलेगी तुझे, तेरी चाहत है सिगरेट, लेकिन फायर जहन्नम में नहीं, उसके लिए तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा जलाने के लिए। सिगरेट को लाइटर के लिए किधर जाना पड़ेगा? जहन्नम में। नहीं नहीं पीना है, नहीं जहन्नम में नहीं जाना है। तो ये नंबर दो पर जिसके घर। नंबर तीन, जिस घर में मियां बीवी जिमा करते हैं उसके बाद नापाक पूरा दिन घूमते रहते, गुसल नहीं करते, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए गुसल कर लेने की। तो ये हजरत हंसला रजी अल्लाह तआला अन्हु का मसला अजीब हो गया, सुभान अल्लाह। गुसल अभी बिल्कुल जिमा से फारिग हुए और ऐलान हुआ, चलो अल्लाह रसूल बुला रहे हैं, बैटल में जाना है, तो अब गुसल करे तो देर हो जाएगी और गुसल न करे तो फिर क्या होगा मेरा। चले गए अल्लाह के नबी के साथ और ओहद में शहीद हो गए, उसी नापाकी में शहीद हो गए। तो फरिश्ते स्पेशल जन्नत से आए और उनको जमीन और आसमान के दरमियान उठाया और उनको गुसल दे रहे थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा, इन्होंने गुसल नहीं किया, जन्नत के फरिश्ते ने गुसल दे रहे हैं, इसलिए उनका टाइटल मशहूर है, गसीलुल मलाइका। हजरत हंसला रजी अल्लाह तआला का टाइटल क्या है? गसीलुल मलाइका। तो जब मोमिन को बुलाया जाता है फौरन इस्लाम का हुक्म है, हम फॉलो करेंगे कुछ भी हो जाए। तो वह उलाइक, अल्लाह क्या कह रहे हैं, वह उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग क्या है, कामयाब है, यही लोग कामयाब है। वमन युतिल्लाह वयख्शल्लाह वयत्तकी फउलाइक। चलो लंबी तफसीर हो जाएगी, अब ये बयान कर रहे हैं आगे और मुनाफिकीन का जिक्र है। उससे पहले अल्लाह ताला मोमिन की तीन सिफत बयान कर रहे हैं कि मोमिन में क्या क्या सिफत होती है, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि मैं मोमिन हूं या नहीं। अल्लाह खोल कर यहां बयान करते हैं और उसी पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने इस आयत पर क्या वाकिया हुआ था, रोमी आदमी का, उसने क्यों इस्लाम कबूल किया, इस आयत को पढ़कर उसको कल इंशाल्लाह बयान करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को अमल की तौफीक अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, يا حنان يا منان، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے مولا ہم کمزور ہیں، اے میرے مولا ہم کمزور ہیں، لیکن تیرے ایک روزے کا حکم پورا کر رہے ہیں، اے اللہ روزے کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں، تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، कुरान के समझने के लिए बैठे हैं, या अल्लाह कुरान को इलाहुल आलमीन अपने सीने में उतारने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह इफ्तारी का टाइम है, रोजे की हालत में बैठे हैं ये तेरे बंदे, इलाहुल आलमीन सबकी मगफिरत फरमा, इफ्तारी का टाइम है अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी में खुशी होती है, मुहद्दिसीन फरमाते एक खुशी तो इफ्तारी की है,
اور ایک خوشی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ روزے رکھنے والے اللہ سے ملاقات کریں گے. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری اعلی اولاد کی گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ رحمت کے عشرے میں ہمیں رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے, ہمیں ہماری اعلی اولاد کو, ہمارے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, اس پورے مجمع کو, جہاں جہاں لوگ سن رہے نیشنل اور انٹرنیشنل, سب کو الہ العالمین اور سارے مسلمانوں کو, سب کو رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. میرے مولا, اے میرے مولا, تو ہمیں رحمت دے دے گا, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ, تو نے فرمایا مسجد میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو وارحمہ, اے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اس پر رحم فرما. اے اللہ فرشتوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے اور ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ قرآن سمجھنے والوں میں سے بنا, بڑی کوتاہی ہے قرآن سمجھنے میں. الہ العالمین ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما, تیرے قرآن سے محبت نصیب فرما, ورنہ قیامت میں تیرا نبی اللہ کے سامنے شکایت کرے گا, اے اللہ یہی میری امت تھی جنہوں نے قرآن کو سمجھنا پڑھنا چھوڑ دیا تھا, اللہ ہم کیا جواب دیں گے. الہ العالمین ہم سب کو سچی پکی محبت قرآن سے نصیب فرما اور تیرے نبی کی سنتوں سے سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے جہاں کوئی نہیں ہوگا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, ایسے وقت میں تو ہمارا بن جانا, تو ہمارا بن جانا, ہمارے قبر کو روشن بنا دینا. الہ العالمین اس میں جوان بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, جب تک تو باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا, جب موت آئے اللہ ایمان پر باقی, ایمان پر موت دینا, تیری رضا والی موت دینا. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہماری اولاد کی مغفرت فرما, اولاد کو نیک بنا, اولیاء کاملین میں سے بنا. جن کی بیٹی ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جن کی جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں, اللہ اللہ ان کو نیک سالے جوڑے نصیب فرما. قرآن کے صدقے الہ العالمین, قرآن کے وسیلے سے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کو نیک سالے جوڑے نصیب فرما, جو جوڑ والے ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما, بے اولاد الاولاد سالے نصیب فرما, اولاد والوں کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.